नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एवरीबडी लाइज, सेठ स्टीफन डेविडोविट्स की डेटा विज्ञान, व्यवहार अर्थशास्त्र और लोकप्रिय सामाजिक विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। इसका मूल प्रश्न सरल लेकिन असुविधाजनक है। लोग वास्तव में क्या सोचते, चाहते और करते हैं, और वे इसके बारे में दूसरों को कितना सच बताते हैं। लेखक का तर्क है कि सर्वेक्षणों, चुनावी पोलों और सोशल मीडिया पोस्टों में लोग अक्सर सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए अपने उत्तर बदलते हैं। इसके विपरीत इंटरनेट सर्च बॉक्स में वे अपनी चिंताएं, इच्छाएं और डर अपेक्षाकृत अधिक खुलकर दर्ज करते हैं। पूर्व गूगल डेटा वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री के रूप में लेखक सर्च, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी साइटों और अन्य विशाल डिजिटल डेटा सेटों के उदाहरणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल चौंकाने वाले निष्कर्ष देना नहीं है, यह पाठक को डेटा की नई संभावनाओं और उसकी सीमाओं दोनों को समझने के लिए प्रेरित करती है। जाति, राजनीति, लैंगिकता, पालन पोषण, स्वास्थ्य और उपभोक्ता व्यवहार जैसे विषयों के माध्यम से यह दिखाती है कि डिजिटल निशान समाज के घोषित विचारों और निजी वास्तविकता के बीच का अंतर उजागर कर सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सर्च बॉक्स को डिजिटल सत्य सीरम मानने का तर्क। पुस्तक का केंद्रीय विचार सामाजिक वांछनीयता पक्षपात है। इसका अर्थ है कि लोग प्रश्न पूछे जाने पर ऐसा उत्तर देने लगते हैं जिससे वे अधिक सभ्य, उदार, स्वस्थ या सफल दिखें। कोई व्यक्ति पोल में अपने पूर्वाग्रह, यौन व्यवहार, मानसिक परेशानी या पारिवारिक तनाव को छिपा सकता है, लेकिन सर्च इंजन से प्रश्न करते समय उसे किसी परिचित के निर्णय का डर अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए लेखक गूगल सर्च को मानव मन की निजी जिज्ञासाओं और चिंताओं का एक असाधारण, यद्यपि अपूर्ण, रिकॉर्ड मानते हैं। यह तर्क यह नहीं कहता कि हर खोज शाब्दिक सत्य है। लोग मजाक, जिज्ञासा, समाचार या किसी और के लिए भी खोज सकते हैं। फिर भी लाखों खोजों के पैटर्न किसी क्षेत्र, समय या जनसमूह की अनकही चिंताओं के संकेत दे सकते हैं। पुस्तक की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह डेटा को केवल संख्या नहीं मानती, बल्कि प्रश्न पूछने के बदलते वातावरण के रूप में देखती है। जब उत्तरदाता की पहचान सामने नहीं होती, तब वही व्यक्ति अलग प्रकार का उत्तर दे सकता है। इसीलिए लेखक पारंपरिक सर्वेक्षण को पूरी तरह त्यागने के बजाय निजी डिजिटल व्यवहार से मिले संकेतों के साथ उसकी तुलना करने का आग्रह करते हैं। दूसरा, बिग डेटा की चार शक्तियां और उनका वास्तविक अर्थ। स्टीफन डेविडोविट्स बिग डेटा की उपयोगिता को चार विशेषताओं से समझाते हैं। ईमानदारी, नवीनता, प्रचुरता और प्रयोगों के लिए उपयोगिता। ईमानदारी का संबंध उन निजी प्रश्नों से है जिन्हें लोग सर्च में पूछते हैं। नवीनता का अर्थ है कि डिजिटल व्यवहार ऐसे विषयों पर संकेत दे सकता है जिनके लिए पहले कोई नियमित माप उपलब्ध नहीं था। प्रचुरता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों अवलोकनों में छोटे लेकिन सार्थक पैटर्न पहचाने जा सकते हैं। चौथी शक्ति यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कई स्थितियों में नियंत्रित प्रयोगों और तुलना की सुविधा देते हैं, जिससे केवल सहसंबंध से आगे बढ़कर कारणों की जांच संभव हो सकती है। फिर भी पुस्तक के तर्क को सावधानी से समझना आवश्यक है। बड़ा डेटा सेट अपने आप निष्पक्ष या कारणात्मक निष्कर्ष नहीं देता यदि खोज करने वाले लोग पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व ना करते हो। यदि शब्दों के अर्थ बदलते हों या यदि किसी घटना पर मीडिया कवरेज बढ़ जाए तो आंकड़ों की व्याख्या भटक सकती है। इसलिए लेखक के सर्वोत्तम उदाहरण आंकड़ों की मात्रा के बजाय चतुर प्रश्नों, उपयुक्त तुलना और बाहरी प्रमाणों से डेटा को जोड़ने पर निर्भर है। पुस्तक डेटा विज्ञान को जादुई भविष्यवाणी नहीं बल्कि बेहतर सामाजिक जांच की विधि के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा, जाति, लैंगिक पक्षपात और निजी विश्वासों का असहज खुलासा। पुस्तक के सबसे चर्चित हिस्सों में सर्च डेटा के माध्यम से छिपे सामाजिक पूर्वाग्रहों की जांच है। लेखक दिखाते हैं कि सार्वजनिक रूप से सहिष्णु भाषा का प्रयोग करने वाला समाज निजी खोजों में बहुत अलग चिंताएं और पक्षपात प्रकट कर सकता है। नस्लवाद से जुड़ी अपमानजनक खोजों के भौगोलिक पैटर्न का उपयोग करके वे इस संभावना पर विचार करते हैं कि कुछ राजनीतिक व्यवहार को केवल घोषित विचारों से नहीं समझा जा सकता। इसी तरह माता पिता की खोजों में बेटियों और बेटों को लेकर अलग चिंताओं तथा अपेक्षाओं के संकेतों पर चर्चा होती है। इन उदाहरणों का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या पूरे क्षेत्र को नैतिक रूप से दोषी ठहराना नहीं है। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि व्यक्तिगत उत्तरों पर आधारित आंकड़े संरचनात्मक पूर्वाग्रहों की तीव्रता को कम करके दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे निष्कर्षों में भाषा और संदर्भ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शब्द की खोज हमेशा खोजकर्ता की निजी मान्यता सिद्ध नहीं करती। इसलिए पुस्तक का व्यापक सबक यह है कि डेटा को सामाजिक निदान की तरह इस्तेमाल किया जाए, अंतिम फैसला सुनाने वाले उपकरण की तरह नहीं। यदि निजी संकेतों को सर्वेक्षण, ऐतिहासिक संदर्भ और अन्य व्यावहारिक आंकड़ों के साथ मिलाया जाए, तो नीति निर्माता और शोधकर्ता उन समस्याओं को बेहतर पहचान सकते हैं जो सार्वजनिक बातचीत में दब जाती है। चौथा, सेक्स। स्वास्थ्य और प्रजनन में घोषित जीवन और खोजे गए जीवन का अंतर, लेखक संवेदनशील विषयों पर डिजिटल डेटा की विशेष उपयोगिता दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में उत्तरदाता अक्सर सबसे अधिक संकोच करते हैं। यौन रुचियों, अश्लील सामग्री की खोजों, मानसिक स्वास्थ्य, गर्भधारण और गर्भपात से संबंधित प्रश्नों के पैटर्न यह संकेत दे सकते हैं कि लोगों का निजी अनुभव सार्वजनिक सर्वेक्षणों से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर, किसी सामाजिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्र में समलैंगिकता से जुड़ी खोजों का स्तर अपेक्षा से अधिक होना यह नहीं बताता कि हर खोजकर्ता की पहचान क्या है, लेकिन यह अवश्य दिखा सकता है कि सार्वजनिक स्वीकृति की कमी लोगों को अपनी जिज्ञासा और पहचान छिपाने के लिए प्रेरित करती है। प्रजनन संबंधी खोजों में समय और स्थान के बदलावों का अध्ययन कानूनों, सेवाओं की उपलब्धता या सामाजिक दबावों के प्रभाव के संकेत दे सकता है। यह दृष्टि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि लोग डॉक्टर या परिवार से पहले सर्च इंजन से सहायता मांगते हैं। लेकिन यह गोपनीयता का प्रश्न सबसे तीखा हो जाता है। किसी व्यक्ति की निजी खोज को लक्ष्य बनाना अनुचित और हानिकारक हो सकता है। पुस्तक की उपयोगी दिशा सामूहिक अनाम पैटर्न की समझ है, न कि व्यक्तियों की निगरानी। सार्वजनिक हित के लिए डेटा का प्रयोग तभी विश्वसनीय होगा जब उसकी व्याख्या संयमित हो और निजता की सुरक्षा केंद्र में रहे। अंत में, पूर्वानुमान, उपभोक्ता समझ और डेटा की व्याख्या की सीमाएं, एवरीबडी लाइज, केवल मानव मन की गुप्त इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती। पुस्तक यह भी बताती है कि ऑनलाइन खोजों और अन्य डिजिटल संकेतों का उपयोग बीमारी के प्रसार, बेरोजगारी, चुनावी रुझान और उपभोक्ता जरूरतों को समझने में कैसे किया जा सकता है। यदि किसी इलाके में किसी लक्षण से जुड़ी खोजें अचानक बढ़ें, तो यह स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रारंभिक संकेत हो सकता है। इसी तरह, किसी उत्पाद, सेवा या समस्या के बारे में लोग किन शब्दों में पूछते हैं, यह मार्केटिंग और जनसंचार पेशेवरों को वास्तविक भाषा और जरूरतें समझने में मदद देता है। इसे सर्च लिसनिंग की उभरती पद्धति से जोड़ा जा सकता है, पर पुस्तक का जिम्मेदार पाठ यही है कि खोज रुझान को भविष्यवाणी का अकेला आधार न बनाया जाए। गूगल के सुझाव, समाचार चक्र, इंटरनेट पहुंच, प्लेटफॉर्म नीतियां और असामान्य घटनाएं खोजों को प्रभावित कर सकती हैं। अतीत में केवल सर्च डेटा पर आधारित स्वास्थ्य पूर्वानुमान गलत भी साबित हुए हैं। इसलिए सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब डिजिटल संकेतों को आधिकारिक आंकड़ों, क्षेत्रीय ज्ञान और स्पष्ट शोध पद्धति के साथ जोड़ा जाए। लेखक की विशिष्टता इस संतुलन में है, वे दिखाते हैं कि डेटा हमारी अंतर्दृष्टि को चुनौती दे सकता है, लेकिन वह सोचने और सत्यापन की आवश्यकता समाप्त नहीं करता। निष्कर्ष में, यह पुस्तक डेटा विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, मार्केटिंग, जनसंपर्क और सार्वजनिक नीति में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो चुनावी पोल, ग्राहक सर्वेक्षण या सोशल मीडिया की छवि को जनमत का सीधा प्रतिबिंब मान लेते हैं। स्टीफन्स डेविडोविट्स का मुख्य योगदान यह है कि वे विशाल डेटासेटों को तकनीकी प्रदर्शन के बजाय मानवीय प्रश्नों से जोड़ते हैं। वे पूछते हैं कि लोग अपने बारे में क्या छिपाते हैं और उनके अनाम डिजिटल व्यवहार से उस छिपाव के बारे में क्या पता चल सकता है। इसी कारण पुस्तक पारंपरिक बिग डेटा पुस्तकों से अलग है, जो अक्सर एल्गोरिदम, कंपनियों या भविष्यवाणी की क्षमता पर अधिक केंद्रित रहती है। यहाँ केंद्र में मानव व्यवहार, उसकी विरोधाभासी प्रकृति और उसे मापने की कठिनाई है। पाठक इससे बेहतर प्रश्न बनाना सीख सकता है। मसलन, किसी सर्वेक्षण के उत्तर को अंतिम सत्य मानने से पहले यह पूछना कि उत्तर देने की सामाजिक परिस्थिति क्या थी और क्या किसी अन्य व्यवहारिक स्रोत से उसकी जांच हो सकती है। साथ ही पुस्तक एक आवश्यक चेतावनी भी देती है, बड़े आंकड़े अपने आप संदर्भ, नैतिकता या कारण का प्रमाण नहीं बनते। निजता, प्रतिनिधित्व और गलत व्याख्या के जोखिम बने रहते हैं, इसलिए इसका सबसे व्यावहारिक लाभ अंधा डेटा विश्वास नहीं, बल्कि अधिक अनुशासित डेटा साक्षरता है। चौंकाने वाले उदाहरणों के पीछे पुस्तक का स्थायी संदेश यही है कि आधुनिक समाज को समझने के लिए सार्वजनिक बयानों और निजी संकेतों दोनों को गंभीरता से पढ़ना होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सेथ स्टीवंस डेविडोविट्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।